प्रेरक उद्बोधन। बोर्ड परीक्षा परिणाम से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए बिलासपुर जिला प्रशासन की पहल। जिले के आला अधिकारी और मोटिवेटर्स 10वीं और 12वीं के बच्चों और पालकों को फेसबुक लाइव द्वारा प्रेरित कर रहे हैं। अरपा सामुदायिक रेडियो ऐप और वेबसाइट पर इन प्रेरक संवादों का प्रसारण किया जाएगा। सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे, दोपहर 3 बजे से इन दोनों ही प्रेरक उद्बोधनों का पुनः प्रसारण होगा। इस कड़ी में आज सुनिए कोतवाली की CSP पूजा कुमार का प्रेरक उद्बोधन।
गुड इवनिंग एवरीवन, मैं पूजा कुमार हूँ। मैं IPS 2020 बैच से हूँ और अभी CSP कोतवाली बिलासपुर के पद पे अभी पदस्थ। आज जो ये फेसबुक लाइव इंटरैक्शन सेशन रखा गया है वो एग्जाम्स के रिजल्ट से रिलेटेड जो तनाव बच्चों में है उसके बारे में रखा गया है। अगर मैं बताऊं तो ये जो टेंशन है, एग्जाम की एंग्जाइटी है, काफ़ी इमोशंस रहते हैं, एंग्जाइटी, टेंशन, एंटिसिपेशन और कई तरह के इमोशंस रहते हैं और हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में फेस किए हैं और ये बहुत ही नेचुरल इमोशन है। एग्जाम लिखते हैं उसके बाद बस रिजल्ट का इंतज़ार होता है। इनफैक्ट एग्जाम के बारे में जितना डर होता है एग्जाम के रिजल्ट से ज़्यादा डर होने लगता है स्टूडेंट्स में। तो मैं ये कहूँगी कि कहना तो बहुत आसान है, अमल करना मुश्किल है, बट एग्जाम का रिजल्ट का एंग्जाइटी लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसमें अगर हम लोग एग्जाम में जो कर लिया उसको हम लोग अब बदल तो नहीं सकते हैं। ये रियलाइजेशन अभी हमने काफ़ी स्पीकर्स ने इसके बारे में बताया है, तो ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि जो एग्ज़ाम हो गया वो ख़त्म हो गया, अब इसके आगे क्या। तो जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है उसको देखिए ज़रूर, बट उसे एक लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट नहीं बना लीजिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम कोई भी रिजल्ट को एक लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट बना लेते हैं। जैसे अगर 10th का रिजल्ट हो गया, 12th का रिजल्ट हो गया और उसमें थोड़े कम नंबर आ गए, तो उसे बस यही समझते हैं कि ये जिंदगी का बस लास्ट स्टेज है। बट ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि जिंदगी एक लैडर की तरह है और हमेशा एक सीधे ग्राफ की तरह नहीं है, काफ़ी उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं। तो ये जो अपना जो सेल्फ आइडेंटिटी है, एक बस एक रिजल्ट से डिपेंड करके कि मेरा 10th में 95% नहीं आया तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, या चाहे क्लास 12 में मेरा 90% नहीं आया, या कोई प्रोफेशनल कोर्स में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, मेडिकल में नहीं हुआ, तो बस हम लोग हताश निराश हो जाते हैं और बस यही समझते हैं कि ये अब बस हमारा करियर खत्म हो चुका है। तो ये एक रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आते हैं। बस 10th 12th का रिजल्ट या कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आने से ऐसा नहीं होता है कि ये जिंदगी का एंड है। तो ये मैं एक मूवी भी बताना चाहूंगी, 12th Fail, और मैं समझती हूँ कि बहुत मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने देख लिया होगा, यहाँ पे एक पेरेंट्स जुड़े होंगे, टीचर्स जुड़े होंगे, देखा होगा। नहीं देखा है तो आई वुड इनकरेज कि ऐसी इंस्पिरेशनल मूवीज देखे उस, और वो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। इट इज़ अबाउट एन IPS ऑफिसर जो क्लास 12 में फेल कर जाता है किसी कारणवश, उसको उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिला, चाहे उससे उतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, उससे उतना एम्फसाइज नहीं किया एग्जाम के बारे में, उसने क्लास 12 में फेल किया और उसके बाद से उसने उसको एक सीख की तरह, लर्निंग की तरह लिया एंड हार नहीं माना, और अल्टीमेटली उसने जाके UPSC एग्जामिनेशन क्लियर किया अपने 4th अटेम्प्ट में, और उसमें उसका पूरा स्ट्रगल जर्नी है। तो इसका यही मतलब होता है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। और एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, हम बहुत चीज़ें हम लोग प्लान करते हैं लाइफ में, ये भी मैं बताना चाहूँगी, बहुत चीज़ें हम लोग प्लान करते हैं बट लाइफ हमेशा प्लानिंग के हिसाब से हमेशा नहीं चलती है। आपने प्लान कुछ किया होगा, होता कुछ और है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे देश में प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके बारे में कि वो हमेशा से एयरफोर्स में जाना चाहते थे और ऐसा हुआ कि वो गए एग्ज़ाम दिया और उनका चंद नंबरों से रह गया, वेटिंग में रहे और काफ़ी हताश और निराश थे रिजल्ट के बाद, क्योंकि वो उनका हमेशा से एम्बिशन था इसमें जाने का पर नहीं जा सके। बट उसके बाद उनका बाकी क्षेत्र में ही बिकेम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और बहुत अच्छा काम किया अपने क्षेत्र में, इसरो में बहुत अच्छा काम किया और देन ही बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत जरूरी है जानना कि लाइफ में ऐसा नहीं है कि एक दरवाजा बंद होता है तो बस खत्म हो जाएगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है और अभी के समय में स्काई इज द लिमिट। बहुत सारे पहले क्या होता था, आज से 20-30 साल पहले दो ही तीन प्रोफेशंस होते थे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब्स में चले जाओ, बट आज के समय में अगर आप देखें तो बहुत सारे अलग टाइप के प्रोफेशन स्टार्ट हो गए, फ्रीलांसिंग एज अ करियर ऑप्शन स्टार्ट हो गया है कि लोग कोई एक स्किल सेट डेवलप करते हैं उसमें काम करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का आजकल से जमाना हो गया, वी लॉगर्स का हो गया। तो मतलब बस यही कहने का मतलब है कि आप अपना रुचि आइडेंटिफाई करें, आपका पैशन आइडेंटिफाई करें और परस्यू कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो 10 लोग कर रहे हैं मुझे भी वही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब लोग यूपीएससी कर रहे हैं तो मुझे यूपीएससी करना है। आपको वही करना चाहिए जिसमें आपको पैशन हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और जिसे आप सोचें कि वो करियर आप अगले 30 ईयर्स तक परस्यू करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट, आप रिजल्ट को देखें, समझें आपकी क्या कमियां रह गई, उसको एनालिसिस करें और पीछे मुड़ के ना देखें, उसके अपने जो वीकनेसेस है उसको आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करके फिर आगे चले। तो मैं क्लास 10 के जो भी बच्चे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि रिजल्ट जब आता है अपना सोचे, अपने रुचि के हिसाब से फिर अपना स्ट्रीम चुने। काफ़ी लोग बच्चे बच्चे मैं देखती हूँ कि भेड़ चाल में साइंस स्ट्रीम का आजकल से प्रचलन हो गया है, तो वो मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं थिंकिंग कि मैं मुझे बस इंजीनियरिंग ही करना है, बट वो इंटरेस्ट का अपने इंटरेस्ट नहीं देखकर वो पर्टिकुलर स्ट्रीम चुनते हैं। तो क्लास 10 के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, ये मेरी अपील है कि आप अपने बच्चों के स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें और जहाँ भी उनका रुचि है उसको निखारने का प्रयास करें, तो वो और भी बेहतर भी उस फील्ड में करेंगे और उनमें एक सेटिस्फैक्शन भी रहेगा। तो ये तो एग्जाम्स की बात होगी उसके तनाव से रिलेटेड। सेकेंड, मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इस पूरे प्रोसेस में। अक्सर बच्चे घर पे तैयारी करते हैं और बस डेली की बातें बस अपने एग्जाम और रिजल्ट से ही रिलेटेड रह जाता है। तो मैं यही कहूँगी पेरेंट्स को कि एग्जाम्स के रिजल्ट और एग्जाम्स और एकेडमिक्स के बाहर भी दुनिया है, कि बच्चों को और भी अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, हॉबीज है, भले ही वो बुक्स पढ़ना हो या कोई गेम्स में कोई रुचि हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, उसमें इनकरेज करें कि जो जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट बाकी चीज़ों में भी डेवलप हो। उसमें क्या होता है, काफ़ी जो बच्चे बस एक ही चीज़ में जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में और कोई कुछ चीज़ बचता नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना इंटरेस्ट जगाए, उनको एक स्पेस मिले कि वो डिस्ट्रेस कर सके। बच्चे सिर्फ पढ़ाई 5-6 घंटे पढ़े, उनके जिंदगी में ये नहीं होना चाहिए कि सुबह उठे, पढ़ाई किए, स्कूल गए, वापस आए, पढ़ाई किए। दे हैव टू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन लाइफ। तो इसीलिए अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो अपने कोई इंटरेस्ट एरिया अपना परस्यू करें, भले ही वो कुछ भी हो, इवन लिसनिंग टू म्यूजिक या मूवीज, कुछ दे शुड इंजॉय, बी हैप्पी एंड लुक फॉरवर्ड टू इन लाइफ। तो इस बारे में सोचे, ध्यान दे, और ऐसा नहीं कि वो मूवीज देख रहा है, क्रिकेट खेल रहा है या कुछ है तो उसे डांटे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक पर्टिकुलर हॉबी ले और उसे अच्छे से परस्यू करे। इसके साथ ही साथ बहुत पेरेंट्स का होता है कि अपने बच्चों को दूसरों से कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करके देखिए उनका कोई फायदा नहीं होगा, बट उनको काफ़ी डिस्करेज फील होता है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होता है और उनके लिए कोई फायदे की चीज़ नहीं है। तो अपने बच्चों को कंपैरिजन और ये जो रैट रेस से दूर रखें और कंपैरिजन नहीं करें, बल्कि कोई भी एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उनको इनकरेज करें, चाहे जितने भी नंबर आए, वो बच्चे ने जितनी भी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसने काम किया, और पुराने बातों को भूल के वो और बेहतर किस तरह से काम कर सकता है उसके बारे में सोचे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है पेरेंट्स का, उनके सिबलिंग्स का, भाई बहनों का, कि अपने जो बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनको जो भी एग्जाम में जैसे रिजल्ट है, अगर खराब रिजल्ट है तो उनको और भी जरूरत है आपकी। तो अगर खराब रिजल्ट है तो आपको उनको और इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, कुछ समय के लिए उनका ध्यान भी उस चीज़ से हटा लेना चाहिए, कहीं बाहर घूमने चले जाओ या कुछ अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो। तो एज पेरेंट्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है। सिमिलरली टीचर्स का, टीचर्स भी सारे बच्चों को फोकस करके अपने बच्चों को लेकर चले, जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसी को भी डिस्करेज ना करें। और इसके साथ साथ एक फ्रेंड्स का भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। क्या होता है, अक्सर स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में हम लोग जो वीक स्टूडेंट होता है उसे बिल्कुल ही अलग थलग करके रखते हैं, तो स्टूडेंट्स, बच्चों को भी ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि फ्रेंड सर्किल्स अपना अच्छा बनाए और अच्छे लोगों के साथ रहे। ये बहुत बार लोगों ने कहा है कि पॉजिटिव लोगों के साथ आप रहेंगे तो आप में पॉजिटिविटी झलकेगी, तो अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ रहे। और अगर एग्जाम की एंग्जाइटी के बारे में लोग बात करते हैं, तो कुछ एक स्टूडेंट्स अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी मानसिकता बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा पॉजिटिविटी दे, एक सपोर्ट सिस्टम दे, उनको इनकरेज करे। कभी कभार कुछ वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट भी काफी लोगों को बहुत मदद कर दे जाता है। पर्टिकुलरली कभी कभार मैं पुलिस विभाग में हूँ, तो मैं बताती हूँ कि काफी सारी ऐसे केसेस आते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट्स हुए, चाहे एग्जाम में फेलियर हो गया, या लव लाइफ के इशू हो गए, या बहुत छोटी मोटी घर पे विवाद हो गया। उस समय अगर कोई एक व्यक्ति उसको सपोर्ट करने को मिल जाता, तो शायद वो ऐसा कदम नहीं उठाता। तो इसलिए आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, उनके मनोस्थिति को आइडेंटिफाई करें, पहचाने और उस पर एक्ट करें। तो ये आप रिजल्ट के समय थोड़ा सतर्क रहे और सपोर्ट करें। इसके अलावा मैं सारे बच्चों को ये कहना चाहूंगी, एक तो करियर गाइडेंस के बारे में बताया, आप अपना फोकस एरिया चुनिए और उसमें परस्यू करें। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी। मैंने यूपीएससी में मेरा थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू गई। आप समझ लीजिए मेरा सांप सीढ़ी के खेल में मैं 99 तक गई और 100 मतलब जो सांप सीढ़ी गेम में है वहां तक नहीं पहुंच पाई। सेकेंड अटेम्प्ट दिया, मैंने फिर से इंटरव्यू तक गया और मेरा फाइनल लिस्ट से 2 नंबर से छूट गया, 2 मार्क्स आफ्टर 2075। तो वो काफी लो मोमेंट था, बहुत डिसअपॉइंटिंग मोमेंट था, बट हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देखना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि मैं बार बार इस स्टेज तक आ रही हूँ, इंटरव्यू तक आ रही हूँ, लास्ट स्टेज तक आ रही हूँ, 2 नंबर से मिस हो रहा है, तो जरूर अगले प्रयास से मेरा और बेहतर ही प्रदर्शन होगा। तो थर्ड अटेम्प्ट में फिर फाइनली मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। तो किसी भी चीज को लाइफ में एक लर्निंग लेसन की तरह से लीजिए। देर इज ऑलवेज सम लेसन इन एवरी थिंग विच हैपन्स इन योर लाइफ। मतलब आप जब अपने लाइफ के डॉट्स जब बैकवर्ड्स कनेक्ट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कोई इंसिडेंट आपके लाइफ में क्यों हुआ। तो वो देखना और समझना बहुत जरूरी है सारे स्टूडेंट्स को। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक हमारे फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन जी है, उनके साथ भी ऐसा हुआ था कि वो ऑल इंडिया रेडियो में इंटरव्यू देने गए थे और उनके आवाज के कारण या जो भी कारण होगा उनको वहां सिलेक्शन नहीं मिला, और आज पूरी दुनिया उनको उनके आवाज के कारण ही उन्हें जानती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यही है कि फेलियर्स को यही हो जाता है कि इट इज़ नॉट दी एंड ऑफ एवरीथिंग। आप फेलियर्स को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए, और जो व्यक्ति फेलियर्स को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है, तो वो और बेहतर जिंदगी में परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा करियर से रिलेटेड भी बताऊंगी कि एग्जाम्स तो जो आपके हो गए सो हो गए, अब आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि 10th के स्टूडेंट्स हो गए, 12th के स्टूडेंट्स हो गए, तो मैं जैसे पहले बताया कि आप अपना स्ट्रीम बहुत केयरफुली चुने और फ्रॉम डे वन आप मेहनत कीजिए। आप ये देखिए, रोम वॉज इन बिल्ड इन वन डे। आप डेली जो अपने एफर्ट्स करोगे, उसी का आपको रिजल्ट अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे मिलेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि एग्जाम के एक महीने पहले जैसे या एक हफ्ते पहले हमें बस यही एक सेंस ऑफ रिग्रेट ही रह जाता है कि हमने और मेहनत कर ली होती, या एग्जाम के बाद वो एंग्जाइटी रहता है। अगर आप आई बिलीव कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो आप जितनी मेहनत अभी करोगे, उतना ही आपके लिए जिंदगी भी आसान हो जाएगी। तो डेली एफर्ट बहुत काउंट करता है। आप जो भी फील्ड में हो, आप डेली बेसिस में आप टारगेट बना के एफर्ट कीजिए और डेली बेसिस में प्लान कीजिए, तो आपका सफर और स्मूथ होगा। तो आप बस कंप्लेन मत कीजिए, डेली बेसिस में प्लान कीजिए, रोज प्रोग्रेस कीजिए, हैव गुड फ्रेंड सर्किल और उस पर काम कीजिए, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। एग्जाम के जस्ट पहले मेहनत करके भी बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो अभी आप वो सब पुराने चीजों से सीखिए और आगे बढ़िए। इसके अलावा मैं थोड़ा ये भी बताऊंगी कि डिस्ट्रेस कैसे करते हैं। मैं कोई बहुत सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फिर भी कई बार हम कैसे डिस्ट्रेस करना चाहिए। जैसे मैं कहीं एक हॉबी डेवलप कीजिए, हॉबीज में जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक, मूवीज, कोई अच्छे बुक्स पढ़िए जो आपको इंस्पायर कर सके, थोड़ा बाहर घूमिए भी। बस घर पे बैठ के रिजल्ट का इंतजार करने से वो रिजल्ट जल्दी आएगा भी नहीं और ना वो रिजल्ट चेंज होने वाला है। तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेकर आप जिंदगी का हर दिन जीना बहुत जरूरी है। जिंदगी बहुत छोटी है, आप बस एक महीना एग्जाम के रिजल्ट के लिए वेट करो, आप सोचिए वो एक महीना आपने कुछ और अच्छा कोई फन एक्टिविटी करके बिताया होता तो और बेहतर रहता। तो अपने हॉबीज को परस्यू कीजिए जब अभी टाइम है, फ्रेंड्स से मिलिए, बाहर जाइए, बाहर घूमिए, ये बहुत जरूरी है डिस्ट्रेस होना। क्योंकि आजकल के जमाने में मैं देखी हूँ कि कंपटीशन आजकल से बहुत बढ़ गया है और गार्जियंस का भी प्रेशर बच्चों पे, उनके एक या दो बच्चे होते हैं उनको उनका प्रेशर यही रहता है कि जो सपने हमने नहीं पूरे किए वो हमारे बच्चे हमारे लिए पूरे करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बच्चों को अननेसेसरी प्रेशर इस तरीके से नहीं देना चाहिए, और उनको अपने खुद के लेवल में जो एफर्ट्स कर रहे हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी है, डिस्ट्रेस कीजिए, अच्छे लोगों से मिलिए, हॉबीज कल्टिवेट कीजिए, तो ये बहुत ज़रूरी है, देन ओनली विल यू लिव अ सेटिस्फाइड लाइफ। इससे अतिरिक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स हेल्पलाइन नंबर्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है, कुछ भी हो, बहुत सारे प्रशासन के भी प्रयास है, हम लोग आपके लिए खड़े हैं। कभी भी आपको कोई भी ऐसा बहुत टेंस्ड हो, कुछ हो और आपके सराउंडिंग में हो, तो प्लीज आके सूचना दे हमें, तो हम जरूर इनको, जो संबंधित कोई भी, अगर किसी को भी कोई हेल्प की जरूरत हो, मेंटल हेल्प की जरूरत, तो हम लोग जरूर इसमें प्रयास करेंगे कि ताकि उनको सही दिशा की ओर लेकर जाए। करियर गाइडेंस में मैंने जैसे क्लास 10 के बाद कहा, क्लास 12 के बाद भी बहुत क्रूशियल हो जाता है कि आप कौन सा करियर चुने। आप जो भी करियर चुने, चाहे यूपीएससी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, एक लॉन्ग टर्म एम लेकर चले। आजकल से बहुत सारे आपके इंफॉर्मेशन मटेरियल अब यूट्यूब में अवेलेबल है, गूगल में अवेलेबल है, आजकल से हर चीज़ दुनिया की गूगल यूट्यूब में अवेलेबल है। तो कई बार हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग उतने सक्षम नहीं है, कि हम लोग दिल्ली, बॉम्बे या कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं जाके तैयारी कर पा रहे हैं, या कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज में नहीं जा पा रहे। तो अब आजकल से दुनिया आपकी मुट्ठी में, आप समझ लीजिए इंटरनेट में खोलिए, गूगल में खोलिए, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप अपना जो भी फील्ड है उसमें एक स्किल सेट प्रिपेयर कीजिए, और अपने आप को एक सेल्फ डाउट में मत रखिए। आप जस्ट जिस दिन से आप अपने आप को सेल्फ डाउट में रखोगे, अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, तो आप समझ लीजिए आधी जंग आपने पहले ही हार ली। तो सेल्फ बिलीफ आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ वर्थ आप में रखिए। एक रिजल्ट से आपका कोई अपना आकलन, बस एक रिजल्ट के नंबर 90 आए या 95 आए, या बगल वाले का मुझसे एक नंबर ज्यादा आ गया, या कई बार ऐसा होता है कि हमने मेहनत तो बहुत की है पर रिजल्ट उसकी अपेक्षा में नहीं आया। हो सकता है कि आपने उस दिन एग्जाम वाले दिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हो सकता है कि चेकिंग जो हुई है जैसा आपने लिखा वो एग्जामिनर को उतना अच्छा नहीं लगा, उसका इंटरप्रिटेशन वैसा नहीं हो। तो कई बार हमारे एक्सपेक्टेशन से खराब रिजल्ट आता है, तो वो भी हम क्या अपने किस्मत को कोसने लगते हैं। तो बस वही, वो एग्जाम नहीं है, आपके लाइफ में और भी अलग अलग पड़ाव आते हैं, वो टेंथ का एग्जाम हो, ट्वेल्थ का एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो। और ऐसा तो कई एक बार देखा गया कि एक कोई छात्र जिंदगी में बस बहुत अच्छा किया है, टेंथ में टॉप किया है, ट्वेल्थ में टॉप किया है और कॉलेज में टॉप किया है, और आपको ये देखकर लगता है कि उसकी जिंदगी में उसने सब कुछ अचीव कर लिया। बट मेरा ये मानना है कि फेलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप फेल नहीं करते हो जिंदगी में, तो जब आप पहली बार अगर आप फेल करो जिंदगी में किसी चीज में, शायद जॉब में आपको अच्छी प्रमोशन नहीं मिली, या जॉब में आप अपना अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आपने कभी फेल करना तो सीखा नहीं। तो फेलियर का एक्सेप्टेंस भी होना बहुत जरूरी है आज के डे एंड एज में। कई एक मामले तो मैं न्यूज पेपर उठा के पढ़ती हूँ कि कितने लोग IITs में जाके गलत कदम उठा लेते हैं, एम्स में या टॉप मेडिकल कॉलेजेस में गलत कदम उठाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बस जो इंसान IIT गया या मेडिकल कॉलेज में गया तो वही जिंदगी में सक्सेसफुल है और आप नहीं है। तो ये कंपैरिजन अपना दूसरों से करना बंद कीजिए। आपकी जिंदगी दूसरों से अलग, हर इंसान बहुत पूरी तरह से यूनिक है, वो अपनी जिंदगी में जैसा प्लान करता है डेस्टिनी में शायद कुछ और अलग होगा। तो ये मान के चलिए, ये आप पॉजिटिविटी आपको देगा, तो आप जैसा मैंने पहले भी कहा आप और बेहतर परफॉर्म करोगे, और मोर देन एनीथिंग एल्स आपका मेंटल स्टेट तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप बस दिन रात यही एग्जाम का टेंशन और यही रोना कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सब सारी बातें ध्यान में रखिए। ये सब मैं जो भी बता रही हूँ, ऐसा कोई बहुत कुछ नया तो नहीं बता रही हूँ, बहुत लोगों को ये बात पता है, बट ये एक रिमाइंडर के तौर पे रखिए, ये रिमेम्बर कीजिए कि आप एग्जाम के नंबरों से बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, और एग्जाम के नंबर्स आपको डिफाइन नहीं करते हैं। एक डिस्ट्रेस का एक और तरीका जो मेरे मिस हो गया, मैं ये बताऊंगी कि ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन कीजिए, मतलब एक कोई छोटी सी डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें आप एंड ऑफ द डे अपने थॉट्स को लिखिए कि आज मैंने क्या किया, क्या अच्छी चीज हमारे साथ हुई, और जो आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है उसके बारे में फोकस कीजिए। क्योंकि ह्यूमन माइंड मैंने देखा है कि ऐसा वायर्ड हो है कि हम लोग नेगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं कि नेगेटिव क्या चीज है मेरी जिंदगी में और नेगेटिव क्या हो सकता है। तो उस माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए एक डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें आप लिखिए आपके दिन में क्या आपने किया, क्या चीज के बारे में आप खुश हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीज आप लिखकर बस रात में उसको हटा के सोने चले जाइए कि आपने जो किया दिन भर में वो हो गया है और अब बस अब नेक्स्ट डे मुझे कुछ और बेहतर करना है। तो ये सोच के अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेटर चेंज आएगा, एक पॉजिटिव चेंज आएगा। और नेगेटिव पर्सन को मैं कह दे रही हूँ कि कोई पसंद नहीं करता, आप बस एग्जाम का रिजल्ट क्या है और दूसरों को यही बताते रहेंगे तो उससे आप ही अपने लिए नेगेटिविटी ले रहे हो और दूसरों को भी आप नेगेटिविटी दे रहे हो। तो आप ये एक सोर्स ऑफ नेगेटिविटी नहीं बन के एक पॉजिटिविटी बने। तो मेरे इस फेसबुक लाइव सेशन में जो भी सारे स्टूडेंट्स टीचर्स पेरेंट्स जो भी लोग जुड़े हैं सभी पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। एग्जाम का जो भी रिजल्ट हुआ कुछ भी हुआ बस कंपेयर मत नहीं करें, किसी का रिजल्ट एग्जाम में आया तो दूसरे को ये ना बोले कि दूसरे का 95 है तो तुम्हारा क्या हो गया, या दूसरों को डिस्करेज ना करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को देखना समझना जानना। तो मैं यही सबसे यही कहूंगी कि आप अपना एग्जाम का रिजल्ट जो हो गया वो भूल जाए, उसके अलावा लाइफ में जो है उसे फोकस करें। और ये समझ लीजिए कि आपका शायद अगर अभी अच्छा नहीं हुआ तो शायद आप जैसे 12th फेल मूवी में वो अभी अपना स्ट्रगल एक मूवी बन चुकी है उनपे, वो अपना फेलियर को किस तरह से फेलियर पार करके उसने एक सक्सेसफुल पर्सन बने उसके बारे में एक जर्नी है। तो आप समझ लीजिए अगर अभी कुछ अच्छा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी में फिर कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, बहुत उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए आगे बढ़िए। और ये सोचिए कोई फेलियर आ गया तो शायद आपके लिए कोई और भी कोई एक स्ट्रगल स्टोरी है जो आपके 10 साल बाद आपके स्ट्रगल स्टोरी से शायद कुछ लोग इंस्पायर हो। तो ये सोच के अपने आप को समझाइए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ उठिए बैठिए, पॉजिटिव चीजें देखिए और नेचुरली आपके लाइफ में फिर आपको ये एक सतारा एक पॉजिटिव बदलाव आपको जरूर दिखेगा। ये कह के मैं अपने इस सेशन को एंड करती हूँ, पर मैं अभी किसी का भी कोई भी सवाल है तो अभी कमेंट सेक्शन में फेसबुक लाइव में जुड़ के अभी सवाल पूछ सकता है, मैं अभी सबके सवाल पूछने के लिए अभी आई एम ओपन। चलिए मैं कमेंट्स में देख रही हूँ, काफी लोगों ने बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स लिखे हैं, एक्सीलेंट और अच्छा, मुझे भी देखकर काफी पॉजिटिविटी लगा, बहुत मोटिवेशन आई कि मेरे सेशन से कई लोग लाभान्वित हुए हैं। और किसी का कोई भी सवाल हो तो मैं आंसर करना चाहूंगी। किसी के अगर कोई सवाल नहीं हो तो मैं सेशन में और भी अगर किसी को करियर गाइडेंस हो, क्योंकि मैं अभी 2020 बैच की IPS हूँ, मैं थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बता देती हूँ। तो मैंने अपनी स्कूलिंग कोलकाता से की थी, क्लास 10 तक कोलकाता में लोरेटो स्कूल से की थी, क्लास 12 में मैंने फिर CBSE से अपना स्कूलिंग किया था, फिर मैंने इंजीनियरिंग किया था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से 2017 में। और मैं अपनी जर्नी से बताना चाहूँगी कि UPSC का एग्जामिनेशन क्लियर करने का पहले से दिमाग में था, बट मैंने कॉलेज से ही अपना डिसीजन बना लिया था कि मुझे UPSC ही करना है। तो उससे मुझे ये लगता है कि मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, मैंने 2017 में जब कॉलेज में पास आउट की थी तो मैं कॉलेज के दौरान ही प्रेपरेशन UPSC का कर रही थी। और कॉलेज में करने से एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि आप पढ़ाई के एटमॉस्फेयर में ही रहते हो तो पढ़ना भी आसान होता है, प्लस उतना प्रेशर भी नहीं रहता है कि आप कुछ अर्न करो। तो कॉलेज का मैंने सही यूटिलाइज़ किया, कॉलेज के समय का टाइम का अच्छा यूटिलाइज़ किया अपना UPSC से रिलेटेड जो भी है पढ़ाई की। और 2017 में पास आउट होके मैंने उसी साल में UPSC दिया था। अक्सर मोस्टली लोग एक साल का ब्रेक लेकर UPSC के एग्ज़ाम देते हैं, पर मैंने उसी साल एग्ज़ाम दिया था। मैं इंटरव्यू तक गई थी पर उस साल में सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट मैं अपना पर्सनली मानूंगी वही मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट दिया, फिर उस अपनी गलतियों से सीखा और फिर अपना थर्ड अटैम्प्ट दिया। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि आप अपना जो भी टाइम अवेलेबल है उसका सही उपयोग कीजिए। बहुत टाइम होता है आपका, जो भी करियर डिसाइड करना है या पढ़ाई करना है काफ़ी टाइम मिलता है हमें उसका सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि द पेन ऑफ रिग्रेट इज़ मच मोर देन द पेन ऑफ डिसिप्लिन। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सब ध्यान में रखिए और अपना जो भी समय है उसका यूज़ कीजिए, हर चीज़ को लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़े, उसके लिए ग्रेजुअली जैसे मैंने पहले कहा था ग्रेजुअली बिल्डअप करें, ग्रेजुअली अपना पढ़ाई करें, अपना उस पर फोकस करे और अपना दिमाग रिजल्ट में नहीं लगाए। पढ़ाई करते वक्त भी अक्सर रिजल्ट ओरिएंटेड फोकस ही हमारा रहता है। जो आप पढ़ाई कीजिए, बस यही ध्यान में रखिए कि मेरा काम पढ़ना है, रिजल्ट से हमें हमारा वो काम नहीं है, वो एग्जामिनर टीचर का काम है। जैसा हमारे भगवद गीता में भी लिखा हुआ है निष्काम कर्मा के बारे में कि कर्म पे हमारा हक है, फल पे नहीं है। तो बस अपने काम पे फोकस कीजिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पे फोकस कीजिए और उसे अच्छे से तरीके से करेंगे तो आपका बेटर रिजल्ट अल्टीमेटली मिलेगा। तो यही कीजिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ट्रेट्स को अपने में डेवलप कीजिए तो आप ज़रूर अपना जो भी गोल है उसको अटेन करेंगे। और मैं एक और भी चीज़ कहना चाहूँगी कि हमेशा ज़िंदगी में एक, जैसे मैंने बताया, प्लान के हिसाब से होता नहीं है, तो प्लान ए के साथ साथ एक प्लान बी भी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। कि आपने कुछ चीज़ सोचा है तो उसके ऑल्टरनेटिव्स भी सोच के रखिए कि अच्छा, अगर ये नहीं होता तो मैं ये भी कर सकती हूँ। तो एक ये सोच के रखेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी खुले रहेंगे कि ये नहीं होगा तो मैं इसमें चली जाऊँगी, ये नहीं होगा उसमें चली जाऊँगी। तो उससे क्या होता है अल्टीमेटली कि आपके लाइफ में तनाव कम होता है। तो ऑलवेज हैव अ प्लान बी, अ बैकअप ऑप्शन। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, UPSC की, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, तो बस घर में बैठे बस एग्जाम्स ही लिख रहे हो 4-5 सालों तक, उसके बजाय ये है कि कोई एक प्लान बी भी डेवलप करना स्टार्ट करो, ताकि अल्टीमेटली अगर किसी चीज़ में फेलियर मिलता है तो आपके पास कुछ और भी है परस्यू करने के लिए। तो ये ज़रूर सारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को मैं बताऊंगी कि ये ज़रूर ध्यान में रखें, सारे टीचर्स और पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताएं कि कुछ भी होता है लाइफ में एक प्लान बी रखें, तो उससे वो और उनके पास एक बैकअप ऑप्शन होता है तो वो बेहतर परफॉर्म कर पाते। एक सवाल आया है, मैम बच्चे स्टडी के अलावा और क्या करे जिससे उन्हें सफलता असफलता का कंटिन्यू होते रहे। स्टडीज़ के अलावा मैं कहूँगी एक स्पोर्ट्स में भी अच्छा कोई डेवलप कर सके। स्पोर्ट्स खेलना भी एक तो ये होता है कि डिस्ट्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो एक गेम में निकलता है। और एक गेम वगैरह खेलने से एक काफ़ी स्टडीज़ भी देखा गया कि पॉजिटिव हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स और अलग अलग रिलीज होते हैं। तो स्पोर्ट्स खेले, और स्पोर्ट्स में भी डेली के बेसिस में कभी भी गेम खेलते तो एक हार जीता फेस करते ही हो, एक कंपटीशन फेस करते, तो वो एक आपके लर्निंग ग्राउंड की तरह हो जाता है। तो कोई गेम वगैरह कुछ अपना परस्यू करे, फिटनेस परस्यू करे, और कुछ नहीं तो कोई रिलैक्सिंग हॉबी हो गई, कोई अच्छे बुक्स पढ़े रात में सोने से पहले, तो वो ज़रूर बहुत हेल्प करता है।
सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।